इस्लाम में बालाधिकार।
श्रोताओ, कार्यक्रम इस्लाम में बालाधिकार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में इस बात की समीक्षा करेंगे कि विभिन्न पश्चिमी देशों में बच्चे की परिभाषा क्या है। मरियम मेहर दादी और मोहम्मद अली गुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए।
बचपन शुरू होने के बारे में देशों के दृष्टिकोण को दो या तीन गुटों में बांटा जा सकता है। पहला गुट उन देशों का है जो बचपन का आरंभ गर्भाधारण के समय से मानते हैं, जैसे लैटिन अमेरिकी देश, आयरलैंड और वेटिकन। जैसा कि इस बात की ओर इशारा हुआ कि बाल अधिकार कन्वेंशन के मसौदे के संकलन के समय इस विषय पर मसौदा तैयार करने वाले देशों के बीच गंभीर बहस हुई थी, ये देश इस बिंदु पर बल देते हैं कि बच्चा दुनिया में आने से पहले जीवन रखता है, इसलिए ज़रूरी है कि कानूनी दृष्टि से उसका समर्थन हो। जैसे अर्जेंटीना ने बाल अधिकार कन्वेंशन के पहले अनुच्छेद में कहा है कि बच्चा शब्द का अर्थ हर इंसान पर गर्भाधारण के क्षण से 18 साल की उम्र तक लागू होता है।
ये दृष्टिकोण अर्जेंटीना के नागरिक कानून से प्रेरित है, जिसमें आया है इंसान का वजूद गर्भाधारण से शुरू हो जाता है और हर व्यक्ति पैदाइश से पहले स्पष्ट व निर्धारित अधिकार का उसी तरह स्वामी हो सकता है जिस तरह वो पैदाइश के बाद होता है। अगर गर्भ में मौजूद भ्रूण जीवित पैदा हो तो उक्त अधिकार उसके लिए हमेशा रहेंगे, चाहे पैदाइश के समय उसे उसकी माँ से अलग कर दिया जाए।
दूसरा दृष्टिकोण बाल अधिकार कन्वेंशन के संकलन के समय अमरीका ने पेश किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बचपन उस समय शुरू होगा जब ये स्पष्ट हो जाए कि बच्चा पैदा होने के बाद जिंदा बाकी रहेगा। उक्त दृष्टिकोण में ना तो पैदाइश को बचपन का आरंभ माना गया है और ना ही गर्भाधारण को, बल्कि इस दृष्टिकोण के अनुसार बचपन का अर्थ उस समय लागू होगा जब बच्चे का जिंदा बाकी रहना स्पष्ट हो जाए, तब उसी क्षण से बच्चा अधिकार का स्वामी होगा। अमरीका के कानून में गर्भ के बाकी रहने की क्षमता उस समय व्यवहारिक मानी जाएगी जब ये कहा जा सके कि भ्रूण माँ के पेट से निकलकर जीवित रह सकता है, और डॉक्टरों का मानना है कि ये स्थिति उस समय पैदा होती है जब भ्रूण 7 महीने का हो जाता है। इस बारे में एक और दृष्टिकोण है जो ज़्यादातर पश्चिमी देशों में प्रचलित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बचपन बच्चे के पैदा होते ही शुरू होता है। बाल अधिकार कन्वेंशन के मसौदे के लिए पोलैंड द्वारा पेश योजना में स्पष्ट शब्दों में आया है कि इंसान का बचपन पैदा होने के क्षण से शुरू होता है।
फ्रांस में भी भ्रूण के अधिकार के लिए 2 शर्त मद्देनजर रखी गई है, एक भ्रूण का जीवित पैदा होना और दूसरा उसमें जिंदा बाकी रहने की क्षमता। लेकिन जर्मनी में नागरिक अधिकार के पहले अनुच्छेद और स्विट्जरलैंड में नागरिक अधिकार कानून के अनुच्छेद 31 में भ्रूण के जिंदा बाकी रहने की शर्त नहीं है, बल्कि ईरान में बाल अधिकार की तरह बच्चा जिंदा पैदा होते ही अधिकार का स्वामी बन जाता है, चाहे वो विकलांग या समय पूर्व पैदा हुआ हो। इटली में बाल अधिकार में भ्रूण का जीवित दुनिया में आना अधिकार से संपन्न होने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि जिंदा बाकी रहना ज़रूरी है। अगर भ्रूण जीवित दुनिया में आए लेकिन किसी कारण से जीवित न रह सके और थोड़े ही समय बाद मर जाए तो वो किसी अधिकार का मालिक नहीं हो सकता।
स्पेन के नागरिक अधिकार कानून में भ्रूण के अधिकार से संपन्न होने के संबंध में अलग शर्त है। इस कानून के अनुसार बच्चा इंसानी शक्ल में हो और माँ के पेट से निकलने के बाद 24 घंटे जिंदा रहे। ये जो शर्तें हैं कि बच्चा जिंदा पैदा हो या पैदा होने के बाद जिंदा बाकी रहने के योग्य हो, इनसे ये बात समझ में आती है कि बच्चा भ्रूण का रूप धारण करने के समय से कुछ अधिकार का स्वामी होता है। ये अलग बात है कि ये अधिकार अस्थायी हैं।
स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में कानून में भ्रूण के जीवित रहने के अधिकार को माना गया है और किसी सीमा तक इसका समर्थन किया गया है। इसके साथ ही भ्रूण के जीवन के आरंभिक चरण में गर्भपात को भी कबूल किया गया है। मिसाल के तौर पर फ्रांस के 1974 के कानून के अनुच्छेद 40 में गर्भधारण के 7 हफ्ते और अमेरिका में गर्भधारण के समय से 6 महीने तक गर्भपात की इजाज़त दी गई है।
गर्भ ठहरने के समय से भ्रूण के लिए जीवित रहने के अधिकार को मान्यता दिए जाने के मद्देनज़र उसके जीवन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसका मूल अधिकार है। भ्रूण के जीवित रहने, मीराश पाने, वसीयत, वक्फ और उसे पहुँचने वाले नुकसान के बदले में हर जाने के अधिकार से संपन्न होने के मद्देनज़र ये दावा किया जा सकता है कि भ्रूण का भी वास्तविक व्यक्तित्व होता है और वो अधिकार से संपन्न होता है। बच्चे के पैदा होने से ये सच्चाई स्पष्ट होती कि बच्चा आरंभ से अधिकार से संपन्न था।
बचपन की समाप्ति भी बाल अधिकार की समीक्षा के नज़र से बहुत अहम है, क्योंकि इससे बच्चे के अधिकार से संपन्न होने की सीमा भी स्पष्ट होती है। दुनिया के बहुत से देशों में बचपन की समाप्ति की उम्र 18 साल मानी गई है। अलबत्ता कुछ देशों में ये उम्र 19 और 21 भी मानी गई है।
अमेरिका के ज़्यादातर राज्यों में बचपन की समाप्ति की उम्र 18 साल मानी गई है। कुछ राज्यों में वयस्कता की उम्र 19 और 21 मानी गई है। फ्रांस में 13 साल से कम उम्र के बच्चे को दंडात्मक धारा से अपवाद रखा गया है और 13 से 18 साल तक की उम्र को भी बचपन कहा गया है, लेकिन अपराध करने की स्थिति में उन्हें दंडित भी किया जाएगा, लेकिन उन्हें दंडित किए जाने की शैली वयस्क लोगों से अलग है। जर्मनी में 21 साल को बचपन की समाप्ति की उम्र माना गया है। अलबत्ता अगर बच्चा 14 से 21 के बीच कोई जुर्म करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन वयस्क की तुलना में उसे दंडित करने की शैली अलग है।
कुवैत, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब में बचपन की समाप्ति की उम्र 18 साल है। इन देशों में 7 साल से कम उम्र के बच्चे हर तरह की जिम्मेदारी से दूर हैं, जबकि 7 से 18 साल के बीच के बच्चे अपेक्षाकृत जिम्मेदारी रखते हैं। बहरीन के कानून में बच्चा उसे कहते हैं जिसकी उम्र जुर्म करते वक्त 15 साल को पार न की हो। मोरक्को के कानून के अनुसार 12 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ दंडात्मक धारा लागू नहीं होगी और बचपन की उम्र 18 साल मानी गई है। कनाडा में बचपन की समाप्ति की उम्र 19 साल है।
दक्षिणी अमेरिका के कानूनी तंत्र में 7 साल से कम उम्र के बच्चों पर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि 7 से 14 साल के बीच के बच्चे दंडात्मक धारा से मुक्त हैं। मगर ये कि न्यायवादी ये साबित कर सके कि अमुक बच्चा अपराध के समय अच्छे और बुरे में अंतर करने की क्षमता रखता था और उसने जानबूझकर कृत्य किया है, इस स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। स्विट्ज़रलैंड में इस देश के संविधान की धारा 64 के अनुसार प्रांतों को 7 से 18 साल की उम्र के बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।
ब्रिटेन के कानूनी तंत्र में बच्चों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला गुट उन बच्चों का है जिनकी उम्र 10 साल से कम है। 1933 में बच्चों और नौजवानों से संबंधित पारित कानून में आया है कि इस उम्र के बच्चों के खिलाफ दंडात्मक धारा लागू नहीं होगी। दूसरा गुट उन बच्चों का है जिनकी उम्र 10 से 14 साल के बीच की है। इस उम्र के बच्चे 1988 तक इस स्थिति में कानूनी कार्रवाई के पात्र बनते हैं अगर मुकदमा चलाने वाला ये साबित कर पाता है कि बच्चे ने भलाई और बुराई को समझने के बावजूद जानबूझकर अपराध किया है। लेकिन 1988 में पारित विशेष कानून में उक्त मान्यता रद्द हो गई।
तीसरा गुट उन बच्चों का है जिनकी उम्र 14 से 18 साल है। इस उम्र के बच्चों के खिलाफ बड़ों की तरह कानूनी धारा लागू होगी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की शैली अलग है। इसमें उनके प्रशैक्षिक सुधार पर ख़ास तौर पर बल दिया गया है। बहरहाल इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि बचपन की समाप्ति के लिए कोई उम्र निर्धारित होनी चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दें।